क्योंकि चारों तरफ लोग किसी ना किसी प्रकार धर्म के मार्ग पर चलते नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे धर्म का प्रचार प्रसार संसार में बढ़ रहा है, उसी अनुपात में भ्रष्टाचार, बेचैनी, हिंसा, व्यभिचार ये समाज में उसी अनुपात में बढ़ता चला जा रहा है। तो मनुष्य को पता ही नहीं लग पा रहा है कि इतने सत्संग के आयोजन हो रहे हैं, इतने धर्म के कार्य हो रहे हैं, इतनी नई नई मस्जिद, नए नए गिरजाघर, नए नए मंदिर का निर्माण हो रहा है, फिर ये समाज को हो क्या रहा है कि इसका पता नहीं होता चला जा रहा है। तो इसलिए इस विषय को समझना बड़ा जरूरी है कि रिवाजिक धर्म और वास्तविक धर्म में अंतर क्या है और किस प्रकार हम वास्तविक धर्म को अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। इसका जो असली निर्णय है वो तो वास्तव में सत्पुरुष ही कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं सद्गुरुदेव महाराज मंगत राम जी के एक प्रश्न उत्तर के माध्यम से ये विषय आपके सामने रखता हूँ कि वो एक ऋषि जो है वो इस रिवाजिक धर्म के बारे में क्या कह रहे हैं। जो धर्म हम लोगों ने समझ रखा है या समाज ने समझ रखा है, उस रिवाजिक धर्म के बारे में सत्पुरुष क्या कहते हैं, उनका दृष्टिकोण पहले देखें। वो कहते हैं रिवाजिक धर्म में वही बातें हैं जो किसी प्रकार के पंथ, मत, अदारे, गिरोह के रहन सहन, रीति रिवाज, पोशाक, खान पान और देश के चलन पर आधारित है। जैसे गिरजाघर जाना, विशेष रूप से परमात्मा की भक्ति करना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, चोटी रखना, जनेऊ धारण करना, तिलक लगाना, कड़ा, कच्छा, कंघा, कृपाण और केश धारण करना इत्यादि सब रिवाजिक धर्म है। उनका वास्तविक धर्म से कोई संबंध नहीं है, उनका वास्तविक धर्म से कोई संबंध नहीं है। धर्म का संबंध वास्तव में शांति के साथ है, धर्म का संबंध वास्तव में शांति के साथ है और रिवाज का संबंध शरीर के साथ है। रिवाज का संबंध शरीर के साथ है। इसीलिए सत्पुरुष का तो बड़ा ही स्पष्ट निर्णय है कि हम लोग जिस धर्म का पालन कर रहे हैं वो शारीरिक धर्म, इसीलिए सारा का सारा ये रिवाज है। और शारीरिक धर्म के पालन करने से मनुष्य के चरित्र में सुधार संभव नहीं, उसको शांति नहीं मिल सकती। ये सत्पुरुषों का आखिरी निर्णय। इसीलिए वो कहते हैं कि धर्म का रूप ना जीव कोए, ना कोई मजहब और पंथ, मंगत यतन जो मुक्ति का, सो धर्म कर वाचे ग्रंथ। देखिए ये अगमवाणी भी इसका निर्णय बड़ा स्पष्ट करती है। हम जो समझते हैं कि हम हिंदू धर्म में शामिल हो गए, मुस्लिम धर्म में शामिल हो गए, ये तो इसी प्रकार समझिए जैसे किसी विद्यार्थी को किसी स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया जाए तो वो स्कूल में एडमिशन होने के बाद वो ये समझ लगे कि मेरा काम तो हो गया, अब मैं विद्वान बन गया। तो स्कूल में एडमिशन कराना ये किसी पंथ या मजहब में जन्म ले लेना या उसको मान लेना मैं इसका फॉलोअर हूं, बस इतना ही। और जब उस स्कूल में भर्ती होकर जब वो पढ़ाई शुरू करता है, उस पढ़ाई में जो वो पुरुषार्थ करता है, वो पढ़ाई से उसका कल्याण, उस विद्यार्थी का कल्याण होता है। इसी प्रकार हिंदू धर्म में पैदा हो जाना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं, मुस्लिम धर्म में पैदा हो जाना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं। बात यह है कि वहां पहुंचकर तू पढ़ाई कौन सी करता है धर्म की, उसका जो भी वहां जो भी सत्पुरुष हुआ है उसके ज्ञान को किस प्रकार से तू अपने जीवन में धारण करता है, उसको सीखने की कोशिश करता है, उसको अपनाने की कोशिश करता है, तो तब जाकर तू धर्म का पालन करने वाला बनता है। तो हम लोग जितने भी हैं वो सारे रिवाजों में फंसे हुए हैं। आप देखते हैं कि कितने धर्म के नाम पर जुलूस निकलते हैं और इनकी तादाद और इनमें भाग लेने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती चली आ रही है, इनकी शानो शौकत भी बढ़ती चली आ रही है। जितना पहले पैसा खर्च होता था इन आयोजनों में आज 50 गुना ज्यादा खर्च होता है नाजिर। हर धर्म के पैरोकार वो अपने जुलूस को और लंबा करने की कोशिश करते हैं, ये दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि हमारा धर्म कितनी उन्नति करता है। उसका परिणाम आप देखते हैं कि कैसे समाज में तनाव पैदा होता है, कितने लोगों को सड़क पर निकलने की जगह नहीं है, कितने लोगों को उसके द्वारा कष्ट होता है, शांति तो किसी को नहीं मिलती, सारे समाज में एक बेचैनी रहती है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन परेशान रहता है, सब सोचते हैं कि किसी प्रकार से ये जुलूस का मौका खत्म हो जाए तो हमको शांति मिले। चौराहा पर लोग मंदिर बना लेते हैं, यहां बरेली में एक सूत धर्म काटा है, यहां पहले एक गोल पेड़ हुआ करता था लेकिन धीरे धीरे वहां लाल लंगोट बांधा, फिर हनुमान जी का मंदिर तैयार कर दिया। जिस चौराहे पर लोगों को निकलने की जगह नहीं, वहां स्वार्थ में आगे कोई व्यक्ति मंदिर बनाता है, और हम जिसको धर्म का पता नहीं है वो उन मंदिरों की फिर रक्षा करते हैं, उसके लिए फिर युद्ध करते हैं, लड़ाइयां लड़ते हैं। तो आप बताइए कि किसी ने कहीं कब्र बना ली, उस कब्र पर एक बिल्डिंग बना ली, उसको मजार कहने लगे, वहां वो माथा टेकता है। हिंदू लोग चौराहे पे मंदिर बनाते हैं, वहां माथा टेकते हैं। तो सत्पुरुष कहते हैं कि इस प्रकार का जो धर्म तुम पालन कर रहे हो, इससे तुमको बेचैनी के अलावा मिलेगा क्या? लेकिन क्योंकि हमारा कोई गाइड नहीं है, कोई पूर्ण गुरु से हमारी भेंट नहीं हुई, उनका सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए समझ में ही नहीं आ पाता कि धर्म क्या है। तो ये जो बाहरी जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं, जितने भी, चाहे वो कुंभ का मेला हो, चाहे वो कृष्ण जन्माष्टमी बनाए, चाहे वो राजगद्दी निकाले, जितने भी ये सारे सारे प्रोग्राम हैं, इनका धर्म से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं। ये सब शारीरिक धर्म की श्रेणी में आते हैं। और हिंदू समाज में तो एक व्रत बड़ा प्रचलन है, महिलाएं कितने व्रत करती हैं और कितने प्रकार से करती हैं, बेटे के लिए व्रत, पति के लिए व्रत, जन्माष्टमी पर व्रत, शिव पूजा के दिन व्रत, पूर्णमासी के दिन व्रत, हर दिन वो ऐसा लगता है कि व्रत का ही है। लेकिन हर व्रत का एक मेनू बना हुआ है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन ही, एक प्रकार का व्रत दक्षिण में किसी और प्रकार से मनाया जाएगा, उत्तर में किसी और प्रकार से। इतनी वैरायटीज हैं कि निर्णय करना मुश्किल है कि किस व्रत का क्या विधान है, कुछ पता ही नहीं। वो भी शरीर तक ही सीमित है। लेकिन यदि व्रत का सही रूप समझना हो तब किसी गुरु से सीखना पड़ेगा। देखिए, एक महाराज जी ने किसी व्रत के बारे में समता विलास में निर्णय दिया है। देखो, जो धर्म सिखाता है, जो गुरु धर्म सिखाता है, वो आपको ये शारीरिक धर्म भी सिखाता है। यदि पालन नहीं करना है तो ठीक प्रकार से पालन करो। हम देखें जरा, एक ऋषि से सीखे कि व्रत कैसे किया जाता है। हम लोग जो व्रत करते हैं, मनमानी करते हैं, वास्तव में तो यह व्रत है ही नहीं। इसका अंदाजा आपको तभी लगेगा, इसका निर्णय तभी हो पाएगा जब इस बात को ध्यान से सुनेंगे कि व्रत होता क्या है। देखिए गुरुदेव क्या लिखते हैं व्रत के बारे में, संता विलास। सप्ताह में एक व्रत रखना चाहिए, सप्ताह में एक व्रत रखना चाहिए। अगर इतनी कुर्बानी ना हो सके तो महावारी एक व्रत रखना चाहिए। व्रत के दिन बिल्कुल सूक्ष्म चीज का इस्तेमाल शाम के वक्त करना चाहिए। व्रत के दिन बिल्कुल सूक्ष्म चीज का इस्तेमाल शाम के वक्त करना चाहिए। ज्यादा अभ्यास अर्थात ईश्वर का स्मरण और ज्यादा सत्संग उस दिन होना चाहिए। यानी हर पहलू में अधिक पवित्रता व्रत के दिन धारण करनी चाहिए। अब बताइए, इस व्रत में शांति का मार्ग है या अशांति का मार्ग? अरे, उस दिन आपने ज्यादा सत्संग करना है। सत्संग या तो श्रवण करोगे या सत्पुरुषों के ग्रंथों का स्वाध्याय करोगे, उससे आपकी बुद्धि में शांति आएगी, मन में शांति आएगी। और ज्यादा प्रभु के नाम का सिमरन करोगे उससे भी मन में शांति आएगी। और पेट की जहां तक बात है, भूख की जहां तक बात है, वो कह रहे हैं कि शाम के वक्त सूक्ष्म आहार ग्रहण करना चाहिए। कुछ नहीं लिखा कि मैदा खानी चाहिए या बेसन खानी चाहिए, कूटू का आटा खाना चाहिए या सिंगाड़े का आटा खाना चाहिए, नमक खाना चाहिए या मीठा खाना चाहिए, केला खाना चाहिए या दूध पीना चाहिए, कुछ नहीं लिखा। दुनिया के सारे व्रत सत्पुरुष के एक निर्णय में समाहित हुए। देखिए कैसा मार्गदर्शन सत्पुरुष का होता है। क्या हम लोग व्रत करने वाले यदि कुछ जिंदगी में सीखना चाहते हैं तो अपनी मनमानी छोड़ने को तैयार क्यों नहीं होते? जो पूर्ण ऋषि धरती पर आया है, अवतार धरती पर आया, वो लिखकर छोड़ गया, उसके अनुसार चलने को हम तैयार क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते कि हमने जीवन में धर्म का पालन नहीं करना, हमने रिवाज का पालन करना। उस रिवाज को हमने धर्म का नाम देकर अपने गले में घंटी बांध ली। इसीलिए जब व्रत का दिन आता है तो घर के खर्च बढ़ जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ईश्वर का भजन छोड़कर खाने का भजन बढ़ जाता है कि कितने बजे बनना है, उसकी तैयारी दिन भर चलती रहती है और बड़े प्रेम से वो पकवान तैयार होते हैं, फिर रात को शाम को वो ग्रहण किया जाता है। तो अब बताइए, शरीर के बारे में ही सोच रहा हूं, शारीरिक धर्म का ही पालन कर रहा हूं, जिसका धर्म से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं। तो ऐसे धर्म मार्ग पर चलकर इस समाज को और समाज में रहने वाले लोगों को क्या प्राप्त होने वाला है? तो जिस रूप में भी धर्म का पालन संसार में हो रहा है वो हमारे जीवन में और संसार में अशांति और मानसिक क्लेश के बढ़ाने वाला है। कम करने वाला नहीं है, बढ़ाने वाला है। अब देखिए ना, जो ईसाई हैं उनकी अंदर से एक ही प्लानिंग रहती है, यदि हिंदुस्तान में रहेंगे तो उनकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू, ज्यादा से ज्यादा मुसलमान, ज्यादा से ज्यादा लो तबके के लोग उनके धर्म में शामिल हो जाएं, वो ईसाई बन जाए। अरे भाई, तुम ईसाई शरीर को बनाओगे ना, उससे क्या होगा? और हिंदू लोग चाहते हैं कि सारे ईसाई मुसलमान ये हिंदू बन जाए, मुसलमान चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम धर्म का को अपना, इस्लाम धर्म को अपना ले। तो सारे लोगों की कोशिश एक ही है कि उनके शारीरिक धर्म का परिवर्तन कर दिया जाए और सारों की बुद्धि उस अज्ञान में डूबी हुई है, जिस अज्ञान के आधार पर उनकी बुद्धि ये निर्णय कर रही है ये जो बाहरी रीति रिवाज है धर्म के नाम पर, यही असली धर्म। इसीलिए गुरुदेव ने साफ कहा कि जनेऊ धारण करना, चोटी रखना, तिलक लगाना, कच्छा कपान धारण करना, या केश बढ़ा लेना, या अंग भंग करा लेना, तो जितना भी ये शरीर से जिस धर्म का संबंध है वो धर्म है ही नहीं। धर्म का संबंध शांति के साथ, और शांति मन की चीज है, बुद्धि की चीज है, शरीर की चीज नहीं है। शांति बेचैनी आपके मन के अंदर होती है, अज्ञानता आपकी बुद्धि के अंदर है। तो धर्म आंतरिक चीज है और ये जो विवादिक धर्म है ये शारीरिक चीज। इसलिए इस भेद को अच्छी तरह से समझ लें कि हमने जिस प्रकार की पूजा पाठ, जिस प्रकार के व्रत, जिस प्रकार के धार्मिक आयोजन हमने अपना रखे हैं, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़कर पैसा खर्च करते हैं, बढ़ चढ़कर उसमें समय अपना खर्च करते हैं, ये आपके पैसे की, आपके समय की और आपकी शक्ति की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। इससे संसार को और जीव को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन इसका निर्णय संसारी लोग नहीं कर सकते, इसका निर्णय केवल सत्पुरुष ही कर सकते हैं। यदि हम निर्णय करने लग जाएंगे तो आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे और धर्म ना समझ में आएगा ना हम पालन करने वाले बनेंगे। इसीलिए यदि कोई चीज ठीक समझनी है तो शास्त्रों के आगे माथा टेकना ही पड़ता है। वो गीता आपको धर्म समझा सकती है, रामायण आपको धर्म समझाती है, ये संत प्रकाश ग्रंथ आपको धर्म समझाता है, जो भी अवतार, जो भी ऋषि पैगंबर, जो भी पूर्ण सदगुरु संसार में आया है, धर्म को उसी ने समझाया है, उसी ने धर्म का पालन करके दिखाया है। इसीलिए उनके जो वाणी और विचार है वही धर्म का निर्णय करते हैं। अब देखें, ये जो धर्म शब्द है ये इसका मतलब क्या है? संस्कृत के साथ से देखा जाए तो ये ध्रा धातु से ये धर्म शब्द की रचना हुई है, और ध्रा का मतलब होता है धारण करना। जीवन में धारण करना, इसका नाम धर्म होता है। क्या धारण करना? कहते कि मन वचन कर्म से ईश्वर को जीवन में धारण करना, यह धर्म है। मन वचन कर्म से ईश्वर को अपने जीवन में धारण करना, यह धर्म है। इसीलिए रामायण में भी गोसाई तुलसी जी लिखते हैं, वचन काय मन मम गति जाही, सपने हूँ बूझिए विपत किताही। कि वचन कर्म और मन से जिसकी गति मेरी ओर है, कहते हैं कि स्वप्न में भी उसके जीवन में विपत्ति नहीं आती। इस विपत्ति का मतलब ये ना समझ लें कि संसार में सारा घटनाक्रम उसके मन अनुकूल व्यतीत होगा। संसार में कितने भी उथल पुथल हो जाए, लेकिन उसके अंदर जो है बेचैनी प्रवेश नहीं करेगी। जिसका मन वचन कर्म धर्म के अनुसार होता है या ईश्वर की ओर जिसकी गति होती है, उसकी स्थिति ये हो जाती है। तो इसीलिए हमारा जितना भी चिंतन है और जितना भी कर्म है, जितना भी पूजा पाठ है, वो ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो निरंतर जो प्रेम है वो ईश्वर के प्रति बढ़े, हम ईश्वर की ओर निरंतर अग्रसर होते रहें। और ये मन वचन कर्म से धर्म कैसे धारण किया जाता है, यदि इस उदाहरण से समझना चाहें तो बड़ा ही एक छोटा सा उदाहरण, एक सरल सा उदाहरण जिसको हम सभी समझ सकते हैं। एक मान लिया एक धन का लोभी व्यापारी, वो व्यापारी क्या करता है आप देखेंगे कि जितनी बात करेगा वो पैसे की ही बात करेगा, व्यापार की ही बात करेगा। जब भी उसके पास बैठेंगे बस वो लेन देन की बात करता रहेगा, और जितनी देर अकेला बैठेगा उतनी देर मन में सोचता ही यही रहेगा कि कौन सा फार्मूला अपनाऊं कि मेरी दुकान ज्यादा चले, कौन सा फार्मूला अपनाऊं कि मेरा टर्नओवर बढ़ जाए, कौन सा फार्मूला अपनाऊं कि ग्राहक मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। उसका एक ही चिंतन चलता है हर समय कि पैसा ज्यादा कैसे कमाया जाए। तो मन वचन कर्म से उसने अपने जीवन में पैसे को, धन को, संपत्ति को धारण कर रखा। जिस प्रकार से इस लोभी व्यापारी ने, लोभी व्यक्ति ने धन को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया हुआ है, धन उसका जीवन है, उसी प्रकार जो धर्मवान व्यक्ति है ईश्वर उसका जीवन है। उसके मन वचन कर्म से एक ही चीज प्रकट होती है कि ईश्वर को जीवन में किस प्रकार से अपनाया जाए, ईश्वर की ओर जीवन में किस प्रकार से अग्रसर हुआ जाए। तो इसीलिए वो व्यक्ति क्या करता है जिसने धर्म सीखना होता है और धर्म मार्ग पर चलने की जिसकी इच्छा होती है, वो फिर सबसे पहला काम क्या करता है, वो सत्पुरुषों के ग्रंथों का स्वाध्याय करना शुरू करता है। सत्पुरुषों के ग्रंथों का क्यों, लोगों के लिखे हुए पुस्तकों का क्यों नहीं? क्योंकि धर्म का निर्णय इतना बारीक है कि केवल सत्पुरुष ही उसको सही समझा सकते, नहीं तो फिर वही होता है कि जैसा कि आजकल के जो मॉडर्न गुरु मिलेंगे आपको, जिनका टीवी पे और बड़े बड़े आयोजन में बड़ा धर्म के नाम पर वो बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, और पीछे उनकी प्लानिंग क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा चेले बनाना और ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करना, अर्थात धर्म की दुकान चलाते हैं वो, धर्म नहीं फैलाते। तो वो सारी बातें तो सत्पुरुषों की करेंगे, रामायण की करेंगे, गीता की करेंगे, उपनिषद की करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज उसमें जोड़ देंगे कि वो आपको उसी ओर ले जाएगी जिस ओर वो धर्मगुरु आपको ले जाना चाहता है। तो इसीलिए ऐसे गुरुओं के नजदीक आकर भी कई बार हमारे मन में भ्रम हो जाता है। टीवी पे सत्संग सुनते सुनते भी हमारे मन में कई भ्रम हो जाता है कि सत्संग तो हमने घर बैठे सुन लिया, हमको क्या फर्क पड़ता है, ये गुरु करता क्या है, कहाँ रहता है, कितने पैसे इकट्ठा करता है, हमें इन बात से क्या बात है। बात तो यह है, जो बात कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, ये शास्त्रों की बात कर रहा है। तो हम लोग धोखा खा जाते हैं और कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। इसलिए ये बात कही जाती है कि यदि धर्म सीखना है तो या तो पूर्ण सदगुरु मिल जाए तो उससे बढ़िया बात ही कोई नहीं, लेकिन पूर्ण सदगुरु मिल भी गया तो आपको क्या क्या सिखाएगा, आपके पास क्या इतनी फुर्सत होगी उसके पास बैठे रहो, या उसको इतनी फुर्सत होगी कि ईश्वर का नाम छोड़ के आपके पास वो बैठा रहे। इसीलिए सत्पुरुष जब धरती पर आते हैं तो उनके द्वारा वाणी प्रकट होती है, उनके द्वारा ग्रंथों की शास्त्रों की रचना होती है। एक गीता हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई लेकिन उसका प्रचार प्रसार आज तक हो रहा है। एक रामायण कितने सैकड़ों वर्ष पूर्व लिखी गई उसका प्रचार प्रसार आज तक हो रहा है। ये वाणी भी आप जो सुन रहे हैं देख रहे हैं ये भी इसको भी लगभग जो है वो 60-70 साल बीत गए लिखे हुए, इसका भी प्रचार प्रसार हो रहा है। तो सत्पुरुषों की जो बात है वो कभी खत्म नहीं होती। हम क्या करते हैं सत्पुरुषों के पीछे भी स्टैंप लगाते हैं, ये मेरा सत्पुरुष ये तेरा सत्पुरुष। अरे सत्पुरुष जगत गुरु के रूप में होता है, वो सारे जगत के लिए होता है। कल ही आप सुन रहे थे कि ये वाणी और विचार ये सारे जगत के लिए हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि सारे जगत को संगत समतावाद जाने, दीक्षा लिए हुए या दीक्षा ना लिए हुए, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है या सिख है ईसाई है, उसमें भेदभाव ना समझे। ईश्वर की तालीम सारे जीवों के लिए, तो किसी भी धर्म में किसी भी संप्रदाय में व्यक्ति क्यों ना रहने वाला हो लेकिन वो इन वचनों का स्वाध्याय वो कर सकता है। तो सबसे पहला काम होता है यदि सीखना धर्म हमने तो हमको सही सत्संग, सही सत्संग उसे कहते हैं जहां पर शास्त्रों की बातों का ठीक ठीक निर्णय किया जाता है। कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी बुद्धि इतनी काबिल नहीं होती कि हम शास्त्रों के मर्म को शास्त्रों के अर्थ को ठीक ठीक समझ सकें। तो यदि कोई ऐसा ईमानदार व्यक्ति मिलता है हमको जिसके जीवन से पता लगता है कि यह धर्म मार्ग पर चलने वाला है तो उसके द्वारा उनके अर्थ को समझने की कोशिश करें, उन विचार को समझने की कोशिश करें, इसका नाम सत्संग। और जिनके पास बुद्धि है वो तो खुद ही धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय खुद उनको करना चाहिए ताकि सही धर्म समझ में आ सके। तो ये जो धर्म है जब समझ में आता है तब व्यक्ति को पता लगता है कि कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जाए। कि सारा संसार चाहे वो धर्म का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिसको हम शारीरिक धर्म कहते हैं, वो कामना की अग्नि में जल रहा है। और जो धर्म का मार्ग है वो किस वास्ते है, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जाए, उसके अंदर शीतलता आ जाती है। इसीलिए जो सही धर्म है उसमें सबसे पहले आपको यह सिखाया जाता है कि तुम त्याग करना सीखो। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि त्याग न के अमृतत्व मानुष, कि मनुष्य जीवन में त्याग ही अमृत है। और हम लोग भोग विलास को अमृत समझते हैं, कहते हैं भगवान ने पैसा ज्यादा दे दिया, यदि साजो सामान ज्यादा दे दिया तो जिंदगी सफल हो। उस मूर्ख को पता ही नहीं है कि इसको भोग के तेरे अंदर जो बेचैनी पड़ेगी ना उसका अंदाजा भी तुझको नहीं है। उसको तो केवल गुरु की दृष्टि ही देख पाती है या कोई धर्मवान पुरुष हो वो उसको देख पाता है कि आज जो ये भोग विलास कर रहा है कल को इसका क्या आश्रय होने वाला है उसको पता लगेगा। जैसे कि जो युवक आजकल पार्टी का मजा लेते हैं ना, कहते हैं कि वे कॉकटेल पार्टी क्लबों में जाते हैं ना, कोई वोदका पीता है कोई 3X पीता है और डांस करता है तो कितने खुश होते हैं। उनकी खुशियां कोई ठिकाना नहीं, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं उनका जो समाज है जिस समाज में वो रहते हैं वो समाज जब उनको देखता है ना तब कहता है ये लड़का तो बड़ा ही बिगड़ा हुआ है, इसके घर में अपनी लड़की कभी नहीं देने। तो समाज को दिखाई पड़ रहा है, उसके माता पिता को भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो युवक उसमें शामिल है उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो भोग विलास में मस्त है। तो ये जो भोग विलास की आंख है ये अंधी आंख होती है। इसलिए जो इंसान भी जो माता पिता भी यदि इसलिए खुश हो रहे हैं कि मेरे बच्चे को भगवान ने बहुत माया दी है और संसार के बड़े सुख भोगेगा, तो याद रखिए उन माता पिता की जो बुद्धि की आंख है ना वो बंद हो जाती है। उनको पता नहीं है तेरे बच्चे की बर्बादी के दिन अब ज्यादा दूर नहीं बचे, वो नजदीक आने वाले, कुछ वर्षों का अंतर हो सकता है लेकिन वो आएंगे जरूर, ये पक्की बात है। क्योंकि सारा संसार देख लो आप, सारा समाज देख लो, कोई भी देश देख लो आप, जिस जिस देश के अंदर पैसा बढ़ा है, जिस जिस देश में एजुकेशन बढ़ी है, जिस जिस देश में पैसा बढ़ने के कारण जो फैशन है जो भोग विलास है वो बढ़ा है, वो देश इस संसार में मिट गया। चाहे वो यूनान हुआ, चाहे वो जर्मनी हुआ, चाहे वो इराक हुआ, चाहे वो इंग्लैंड हुआ, हर देश की बर्बादी हम लोगों ने भारत के प्रति जो इतिहास हमको हमारे सामने वो इतिहास गवाह है इस बात का। जिस देश ने भी आर्थिक प्रगति की है, ये भोगवादी प्रगति की है, वो देश एक दिन गर्त में चला गया है। और आज यदि प्रैक्टिकल उदाहरण देखना है तो चाइना का देख लो, जिसकी आर्थिक उन्नति इस समय विश्व में सबसे तेज है। उसने विश्व को आंखें दिखानी शुरू कर दी, धमकियां देनी शुरू कर दी हैं कि हम अपनी शांति को बनाए रखने के लिए युद्ध से नहीं डरते। और शांति कौन सी है कि हमको हर रीति से पैसा कमाने दो, भोग विलास बढ़ाने दो, अपनी सीमाएं बढ़ाने दो, इसमें जो भी रुकावट डालेगा उससे हम युद्ध करेंगे। तो बताइए ये देश कहां जाएगा? ये वहीं जाएगा जहां जर्मनी चला गया, ये वहीं जाएगा जहां एक वक्त यूनान था वो चला गया। तो याद रखिए, ये जो अंधा विकास है, चाहे हमारे घर में हो चाहे देश में हो, उस घर ने भी डूबना है एक दिन, उस समाज ने भी डूबना है, उस देश ने भी डूबना है, वो बच नहीं सकता। तो सत्पुरुष कहते हैं इसीलिए धर्म को सीखना जरूरी है। तो धर्म का जो सबसे मुख्य पहलू है वो ईश्वर उपासना है। तो हम जो ईश्वर उपासना करते हैं वो तो करते हैं माया को बढ़ाने के लिए, अपनी संसारिक कामनाओं को पूरी करने के लिए। देखिए ऋषि कहां गाइड कर रहा है हमको, वो कैसा मार्गदर्शन कर रहा है कि प्रभु उपासना या धर्म का पालन जीवन में क्यों किया जाता है, किस वास्ते किया जाता है, पहले उसको समझने की कोशिश करें, तभी निर्णय होगा कि धर्म हम अपनाए कैसे जीवन में। देखिए गुरुदेव लिखते हैं संत रविदास में, तृष्णा रूपी अधिक रोग से छूटने के वास्ते एक अखंड अविनाशी रूप की उपासना लाजमी है। तृष्णा रूपी अधिक रोग से छूटने के वास्ते एक अखंड अविनाशी रूप की उपासना लाजमी है। तृष्णा रूपी रोग है और हम इस तृष्णा का स्वागत करते हैं। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है हमारी इच्छाएं बढ़ती है, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, हमारी जरूरतें बढ़ जाती हैं, उसके लिए और धन कमाते हैं, फिर और नई आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। कहते हैं कि यह तो समाज का चलन है, ये तो मिनिमम नीड है, तो पूरी करनी ही पड़ेगी। तो मिनिमम स्टैंडर्ड हमारे कहां से कहां पहुंच जाते, तो वासना हमारी बढ़ती है, तृष्णा हमारी बढ़ती है, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लिए, कितना भी विकास कर लिए, आप देखेंगे कि दूसरों के मुकाबले में अभी भी आप कम विकसित हैं, इसे उनको देखकर आपकी तृष्णा बढ़ जाती है। तो ये रोग है। क्यों रोग है? क्योंकि इसके द्वारा मेरा मन अशांत हो जाता है, मेरे जीवन का चैन छिन जाता है। आज शादी ब्याह में इतनी बेचैनी क्यों देखने को मिलती है? लड़की वाले भी परेशान, लड़के वाले भी परेशान, दोनों ही परेशान, खर्चे इतने बढ़ गए हैं, दूसरे की देखा देखी। अब खर्चे बढ़ गए हैं तो क्या करोगे भाई, डिमांड करोगे आप कहीं? तो लड़के वाले लड़की वाले से डिमांड करते हैं कि इतना स्टैंडर्ड तो आपको करना ही पड़ेगा, ये हमारी नाक की बात है। अरे मूर्ख, तुझे पता ही नहीं, ये नाक तेरी बचने नहीं है, ये नाक तेरी कट रही है, और काट कौन रहा है? ईश्वर ही तेरी नाक काट रहा है। कैसे काट रहा है? जिस शांति के लिए तू तुझको मानव बनाया गया था, जिसको ये बुद्धि दी गई थी, इस बुद्धि का उपयोग करके तू शांति का मार्ग बढ़ेगा, तूने अशांति का रास्ता चुन लिया। अब तू भी डूबेगा, तेरा कुल भी डूबेगा। तू मांगने जितना मांगना हो मांग तो सकता है। भिखारी भी जब हाथ फैलाता है तो लोग हाथ में रखी देते हैं। तो मैं भी, मैंने अपने बेटे को इंजीनियर डॉक्टर बनाया है, तो किसी से 30 लाख लोग मांगो दे तो देगा ही कोई ना कोई, लेकिन मैं भिकमंगा बनकर, भिखारी बनकर अपनी नाक कटवाने चला हूं और सोच रहा हूं कि मेरी उन्नति हो रही है, मेरा नाम रोशन हो रहा है। तो सोच हमारी कहां से कहां पहुंच गई, क्योंकि हमने वासना को, तृष्णा को विकार नहीं समझा, इसको रोग नहीं समझा, हम इसका स्वागत करने चले। इसलिए कहते हैं कि तृष्णा रूपी रोग से बचने के लिए कहते हैं एक ईश्वर की उपासना लाजमी, इस तृष्णा को कम करने के लिए ईश्वर की उपासना की। आगे क्या कहते हैं? कर्मों के फल भोगने में धीरजवान रहने की खातिर एक ईश्वर की पूजा लाजमी। कर्मों के फल भोगने में धीरजवान रहने की खातिर ईश्वर की उपासना लाजमी, क्योंकि हमारी मानसिक बेचैनी का एक और बहुत बड़ा कारण है, हम संसार में जब रहते हैं जो बेईमानियां करते हैं उनकी बात तो मैं छोड़ देता हूं एक बार, लेकिन जो ईमानदारी से संसार में चलते हैं उनके जीवन में भी आपने देखा होगा कोई ना कोई दुख आता ही रहता, कभी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, कभी परिवार बिगड़ जाता है, कभी नौकरी बिगड़ जाती है, कभी व्यवसाय बिगड़ जाता है, कभी कोई धोखा देके चला जाता है, कभी कोई मर जाता है, तो दुख के दिन उनके जीवन में भी आते हैं, बड़े परेशान होते हैं। वो ज्यादा परेशान इसलिए होते हैं कि मैंने जीवन में बेईमानी कोई नहीं क्यों नहीं की, मेरे घर चोरी क्यों हो गई, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मुझको लोगों ने धोखा क्यों दिया, मैंने बड़ी ईमानदारी से कमाई की, मेरी इनकम कम क्यों हुई। तो वो ईश्वर को कोसना शुरू कर देता है, कहता प्रभु तू न्यायकारी नहीं है, तूने अन्याय किया, मैं ईमानदारी से जीवन व्यतीत कर रहा हूं फिर भी मेरे जीवन में दुख है, ये कैसे हो सकता है। इसीलिए वो कहते हैं कि कर्मों का फल भोगने में धीरजवान रहने की खातिर ईश्वर की उपासना लाजमी है, क्योंकि तेरा जो वर्तमान जीवन है ये तेरे प्रारब्ध के अनुसार चल रहा है, कितने जन्मों के कर्म फल तुझको इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं, इसीलिए तेरे जीवन में सब कुछ ठीक करते हुए भी सुख के दिन भी आएंगे, दुख के दिन भी आएंगे। वो सभी के जीवन में आते हैं, अमीरों के जीवन में नहीं आते क्या? उनके बच्चे ही जब बिगड़ जाते हैं, उनके बच्चे ही बड़े होकर जब माता पिता को आंख दिखानी शुरू कर देते हैं तो सोच लो उनके माता पिता के दिल पे क्या बीतती होगी। अपनी पत्नी ही जब पति से नफरत करने लग जाती है, अपना पति ही जब पत्नी से नफरत करने लग जाता हो तो सोच लो तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी। तो खुलेआम संसार में देखने को मिलता है, सास बहू का रिश्ता मां और बेटी का हुआ करता है, लेकिन इस स्वार्थ ने हमको कहां लाके खड़ा कर दिया कि सारी जिंदगी दोनों यही समझते रहते हैं कि मैं जब नए घर में आई हूं तो मेरा अधिकार है इस घर के सुख मुझको मिले, और साथ कहती है ये जिस घर से भी आई है ये मुझको सुख दे, दोनों का अंदर एक ही कल्पना है कि ये मुझको सुख प्रदान करे, ये इसका फर्ज है और मेरा अधिकार है। तो ऐसी हालत में मनुष्य को बेचैनी नहीं तो क्या मिलेगी। इसीलिए जीवन में जब ऐसे दिन देखने को मिलते हैं तब कहते हैं कि हमको ईश्वर आज्ञा देखनी चाहिए कि प्रभु सब कुछ ठीक करके भी कोई गलत व्यक्ति से मेरा संबंध बन गया तो ये मेरे प्रारब्ध चक्र है, प्रभु आपने ही ये भेजा, तो वो उसको धैर्य पूर्वक सहन करता है ईश्वर आज्ञा, और ये काम केवल वो कर सकता है जिसके अंदर ईश्वर विश्वास पक्का है और जो धर्म है। अगली बात वो क्या कहते हैं, निर्भय निर्वास होने की खातिर ईश्वर की उपासना लाजमी। हम डरे रहते हैं, कभी रोग से डरते हैं, कभी घाटे से डरते हैं, कभी मौत से डरते हैं, कभी किसी के धोखे से डरते हैं, कोई गलती ना हो जाए इससे डरते रहते हैं, कोई अनर्थ ना हो जाए इससे डरते रहते हैं। तो भय एक अनिश्चय का वातावरण हमारे मन में एक बना रहता है, यही हमारे डिप्रेशन का कारण बनता है आगे चलकर। लेकिन जो धर्मान पुरुष है वो जानता है कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो ईश्वर के निर्णय के विरुद्ध, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, जिसके लिए वाणी कह रही है जो हो ना सो हो रहा प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाई, कि तिल मात्र भी इस संसार में उथल पुथल बिना उस प्रारब्ध चक्र के हो नहीं। इसलिए भय किस चीज का, इसीलिए जो ईश्वर भक्त है वो निर्भय होकर जीवन व्यतीत करता है, वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है कि जो परिस्थिति आई वो प्रभु मेरे लिए भेजेंगे ना तो मुझको क्या शिकायत हो सकती है, मेरा काम है जैसा प्रभु ने गुरु बनकर गाइड किया है ना मुझको, मैंने उसके हिसाब से सोचना है, उसी के हिसाब से जीवन व्यतीत करना है, बस मेरा काम यह। तो वो धर्म के मार्ग पर चलता है, गुरु प्रायण जीवन अपनाता है, वो भयभीत नहीं होता, इसके लिए ईश्वर की पूजा किया, इसके लिए धर्म का पालन किया। तो अब बताइए जो पूजा हमको इस ओर ले जाने में समझ नहीं है तो क्या वो पूजा ठीक हो सकती है। इसीलिए देखें कि किस प्रकार ये पूजा के बारे में सब कुछ हमको गाइड करते हैं। सबसे पहले तो देखो कि हमारी जो कमाई है ना, जो तो धर्म मार्ग में चलने के लिए, ईश्वर की पूजा करने के लिए सबसे पहले जीवन की शुद्धि आवश्यक है, क्योंकि आपने अभी सुना कि सबसे बड़ा रोग वासना का है, ये वासना हमारी पैसे से और भोग विलास से बढ़ती है, तो सबसे पहले जो सत्पुरुष हमारे बंधन हमको बंधन में डालते हैं या प्रतिबंध लगाते हैं वो पैसे पर लगाते हैं। इसीलिए देखो ऋषि क्या कहते हैं कि न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन धीमता कर्तव्यो विनियोगस्य ईश्वर प्रीत्यर्थ नियुक्तः। कहते हैं कि न्याय से उपार्जित धन का 10% ईश्वर के कार्यों में खर्च करना ये मनुष्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। न्याय से उपार्जित धन का 10% ईश्वर के कार्यों में अर्थात निष्काम सेवा में खर्च करना ये मनुष्य का बुद्धिमान मनुष्यों का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। इस कर्तव्य का जो पालन नहीं करता उसको हानि होगी। ये बड़ा स्पष्ट महाराज जी ने लिखा इस 10% का जो अपने इस्तेमाल में उसको पैसे को कर लेता है उसको हानि। तो अब बताइए कि हम पहले तो बेईमानी से पैसा कमाते हैं फिर सारा का सारा खा जाते हैं बल्कि बैंकों से कर्जा लेकर भी खा जाते हैं। ऐसी तो हमारी भूख है वासना। तो सबसे पहले यदि हमने इस बात को समझा है कि वासना ये रोग है इस इलाज के लिए भगवान ने मुझको ये बुद्धि दी इसके इलाज के लिए ही मनुष्य को कहा जाता है कि तू किसी गुरु के आगे माथा टेक गुरु को जीवन में धारण कर। इसी के लिए कहा जाता है कि किसी सत्पुरुष का तो सत्संग श्रवण कर। इसी के लिए कहा जाता है कि धर्म ग्रंथों का तो स्वाध्याय कर ताकि मैं इस रोग को समझ कर ईश्वर की उपासना को सही रूप में जीवन में धारण कर। इसलिए सबसे पहले मैं अपने जो भोग विलासते हैं उसको कम करने की कोशिश कम पैसे में गुजारा करना सीखा ताकि वो 10% बचाकर मैं उसको दीन दुखियों की सेवा में लगा और जो बेईमानी से पैसा कमा रहा हूं उस बेईमानी को करने की भी मुझको जरूरत महसूस ना हो। कि जब कम पैसे में गुजारा चल जाएगा बेईमानी करने की जरूरत ही क्या क्योंकि उस बेईमानी का परिणाम आगे चलकर फिर आपको दुख ही भोगना है। आज तो आपको शौक लग रहा है लेकिन भविष्य में पता लगेगा कि भाई आपके जीवन में दुख का कारण बनेगा भाई आपके परिवार को बिगाड़ने का कारण बनेगा। इसीलिए वो ईश्वर पूजा से पहले वो ये बात जीवन को शुद्ध करने की बात करते हैं। जब पूजा की बात आती है तो देखिए सत्पुरुष क्या मार्गदर्शन करते हैं। हमारी जितनी भी उपासना है वो बाहर की उपासना कितनी भी जैसा कि आपको बताया गया ये रिवाजिक जैसे धर्म है तो पूजा भी हमारी रिवाजिक है। इसका आपके जीवन की शांति से कोई संबंध नहीं। इसलिए रामायण में एक अध्यात्म रामायण में प्रसंग आता है जब माता कौशल्या का अंतिम वक्त नजदीक है भगवान राम उनके पास बैठे तो माता कौशल्या अपने पुत्र से ही प्रश्न करती है कि हे राम यद्यपि तू मेरा पुत्र है परंतु मैं ये जानती हूं कि तू अवतार है तू खुद ईश्वर लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि तेरे असली रूप के दर्शन कैसे हो सकते तेरे असली रूप के दर्शन कैसे हो सकते हैं मैं ये जानना चाहती हूं। तो भगवान राम क्या कहते हैं हमसे यावत माम अर्चयेत देवम प्रतिमादौ स्वकर्मभिः यावत सर्वेषु भूतेषु स्थितम चा आत्मनि न स्मरे। कहते कि जब तक तावत माम अर्चयेत देवम प्रतिमादौ स्वकर्मभिः कहते हैं कि प्रतिमा आदि में प्रतिमा कहते हैं मूर्ति को कहते हैं प्रतिमा आदि में कर्म कांड के द्वारा उपासना तभी तक करनी चाहिए कहते हैं यावत सर्वेषु भूतेषु स्थितम चा आत्मनि न स्मरे जब तक तेरी बुद्धि इतनी विकसित ना हो जाए कि वो ये समझने में समर्थ हो सके कि मैं सारे भूत प्राणियों के अंदर निवास करता हूं प्रभु सारे भूत प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं जब तक ये बात समझने में तेरी बुद्धि समर्थ ना हो जाए तब तक तू बाहर मूर्ति की के द्वारा तू प्रभु की उपासना कर लेकिन जब तेरी बुद्धि इस लायक हो जाए फिर तुझको अंदर प्रभु की उपासना करनी चाहिए क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। गीता में बड़ा स्पष्ट है कि सारे भूत प्राणियों के हृदय में मैं विराजमान हूं भगवान कृष्ण कहते हैं सारे भूत प्राणियों के हृदय में मैं विराजमान हूं प्रभु जहां निवास कर रहे हैं वही तो उनकी पूजा करोगे। तो गीता भी वही बात कह रही है रामायण भी वही बात कह रही है लेकिन हम लोग जो है उसकी उपासना बाहर करते इसलिए सत्पुरुष ने जो उपासना सिखाई वो नाम के द्वारा मंत्र के द्वारा अंदर की उपासना सिखाई। इसलिए रामायण में प्रसंग आता है जहां तुलसी जी कहते हैं सबरी गीत सुसेवक
सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गात।
कहते हैं कि हे राम, तुमने शबरी जटायु हनुमान जितने भी अच्छे अच्छे आपके सेवक थे उनका उद्धार कर दिया, जिनकी राम से भेंट हुई, जिनको राम के पास रहने का मौका मिला, दशरथ नंदन राम ने उनका उद्धार कर दिया। लेकिन आगे कुछ राजी क्या कहते हैं वो समझने की बात है। वो कहते हैं कि नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गात, लेकिन आपके नाम ने, भगवान राम के नाम ने, वो कहते हैं कि अमित खल अनगिनत मूर्खों का उद्धार कर दिया, अनगिनत अज्ञानियों का उद्धार आपके नाम ने कर दिया। तो अब बताइए मुझे, राम का महत्व ज्यादा है या राम के नाम का महत्व ज्यादा है? इसीलिए गुरुदेव जी हैं वो वाणी में कहते हैं, एक नाम गुरु करी बख्शीश, पल पल सिमरे सो स्वरूप जगदीश। एक नाम गुरु करी बख्शीश, पल पल जपे सो स्वरूप जगदीश। पूर्ण गुरु के द्वारा जिस मंत्र की प्राप्ति होती है, जिस नाम की प्राप्ति होती है, वो जगदीश का स्वरूप है, वो खुद परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर का संग जब ये जीव, ये मनुष्य मौन होकर अंदर मन द्वारा करता है, तो अंदर जो घटघट व्यापी राम है वो प्रकट होता है। उस घटघट व्यापी जो राम है उन्हीं का नाम नाद है, उन्हीं का नाम ओम है, उन्हीं का नाम कुंडलनी है, उन्हीं का नाम आत्मा है, उन्हीं का नाम काली है, वही शिव है, वही राम है, वही नाद रूप परमेश्वर है। तो इसीलिए जब तक अंदर घटघट व्यापी राम का दर्शन तो उनका अनुभव नहीं कर सकता, या जब तक नहीं होता तब तक उसको शांति नहीं मिलती। तो शांति का रास्ता, धन का रास्ता अंदर होकर जाता है, बाहर आपने इतना ही करना होता है कि लोगों के पास जब आप रहते हो तो उनसे व्यवहार शुद्ध रखो, पैसा अभी सीमित मात्रा में इकट्ठा करने की कोशिश करो ताकि भोगों पे आपका संयम बना रहे, बच्चों को भी कम खर्च करने की आदत सिखाओ, सत्संग के प्रति, स्वाध्याय के प्रति आपके अंदर अपने अंदर रुचि पैदा करो, और किसी पूर्ण गुरु का आश्रय लेकर उसके मंत्र का जाप करना शुरू करो। वहीं से पता लगेगा कि ये जैसे जैसे मैं जाप करूंगा और बाहर का जो संसारी जीवन है उसको मैं शुद्ध करूंगा, व्रत भी करना है तो गुरु के बताए हुए, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार करना चाहिए। हजारों प्रकार के व्रत को छोड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, केवल सामाजिक परंपरा है। ये हर व्रत भी आपके लिए एक बंधन है। तो सतपुरुष तो हर चीज से आपको आजादी दिलवाता है, इसलिए आजादी दिलवा रहा है ताकि मौन होकर तू प्रेम से अंदर बैठकर उस प्रभु की याद कर। इसीलिए ऐसे भक्त जब परिवार में पैदा होते हैं तब वो परिवार स्वागत करने योग्य होता है। इसलिए अंत में भगवान शंकर उमा से कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनी, श्री रघुवीर परायण यही नर उपजति। कहते हैं कि हे उमा, जगत में वही परिवार पूजने योग्य है जिसके परिवार के अंदर ऐसा व्यक्ति पैदा हो जाए जिसका जीवन प्रभु पर है, धर्म पर है। तो हम पैसे से समाज में पुजारी नहीं, पूज्य नहीं बनेंगे, हमारा नाम उससे नहीं होगा, हमारा आदर सत्कार उससे नहीं होने वाला। हमारा आदर सत्कार तब हो सकता है पैसे वाले हो भी तभी धर्मवान।
ओम ब्रह्म सत्य।